हम कल कुछ कुछ बातें भक्ति के अधिकारी के विषय में हुई थी, उसमें से कोई भी बात कोई भी बोलिए भक्ति के अधिकारी के विषय में। श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धावान जन है भक्तिर अधिकारी। हाँ, श्रद्धा है, उसी को कहीं कहीं रुचि कहा गया है, उसी को कृष्ण के भजन के प्रति सेवा के प्रति आकर्षण कहा गया है।
भक्ति का कारण भक्ति है।
ठीक
है।
भक्ति के दो विशेषण है, अच्छा ठीक।
भक्ति की श्रद्धा का निर्धारण उसके श्रद्धा के अनुसार उसका निर्धारण किया जाता है।
ठीक, मायापुरवासी कुछ कह रहे थे।
जो व्यक्ति साधन भक्ति कर रहा है वो विकल्प से दूर रहता है, फिर भी अगर कोई पाप में हो जाता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है।
हाँ ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या मैं पूछा था तो पूर्णानंदी, मैं क्या पहले बोला था, क्या पूछा था?
जो बहुत ज्यादा अटैच ना हो, वैराग्य ना हो,
जिसमें यही मैं पूछा था,
भक्ति का अधिकारी कौन है?
भक्ति का अधिकारी कौन है? तो भक्ति की विशेषता भक्ति के अधिकारी में ही घुसा दिया गया, कोई बात नहीं, उसकी भी चर्चा हुई थी। ठीक ठीक है। साधन भक्ति के कितने भेद बतलाए गए? कौन कौन? वैधि और रागानुराग। वैधि भक्ति का क्या अर्थ है? दीपिका बोलो। हाँ, जो साधन से की जाती है तो वही तो साधन भक्ति है, मतलब इंद्रियों से कृति साध्या, जिसका संपादन कृति मतलब करने वाले इंद्रिय से, मन वचन शरीर से किया जाए, और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है, तो उसको साधन भक्ति कहा जाएगा। ठीक, गीता में भगवान ने कुछ भक्तों के अधिकारी का उल्लेख किए हैं। चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख किए हैं, कौन कौन? थोड़ा रुक रुक करके बोलिए, अर्थार्थी और हार। और उत्तमा भक्ति की क्या परिभाषा है? तो इस स्तर पर, इस स्टैंडर्ड को देखा जाए तो अर्थार्थी या ज्ञानी या जिज्ञासु उत्तमा भक्ति के स्तर पर है कि नहीं?
नहीं।
और भगवान तो गीता में जिन अधिकारियों का वर्णन किए हैं तो उत्तम भक्ति के स्तर से वे नीचे के हैं, लेकिन वे भी शुद्ध भक्ति के, उत्तम भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। कैसे अधिकारी होंगे? आए हाँ, भक्तों के कृपा से या भगवान के कृपा से वे भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। उदाहरण दिया गया है, चार ग्रुप भगवान बांटे गए हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञान। वो चारों के उदाहरण दिया गया है। ये आर्त, आर्त का क्या अर्थ है?
दुखी है,
दुखी है,
संकट में है,
संकट में है। संकट में है तो क्यों भक्ति कर रहा है? संकट को बढ़ाने के लिए? तो उसके मन में एक वासना है, इच्छा है कि हमारा संकट दूर हो जाए, तो इतना ही उसकी कमी है ना, कि एक वासना है। तो वासना छीण हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो स्टैंडर्ड भक्ति के स्तर पर आ जाएगा, उत्तम भक्ति के स्तर पर आ जाएगा। गजेंद्र जी संकट में थे और उनकी इच्छा थी कि इस संकट से हम मुक्त हो जाए। गजेंद्र जी की कथा तो सब लोग सुने होंगे ना, रक्षक कहाँ वे संकट में पड़े थे, किस स्थान पर आए? हाँ, स्थान क्या था, क्या नाम था उस जल का? जिस स्थान पर संकट में पड़े थे, कौन नाम बतलाएगा? चित्रकूट। चित्रकूट, त्रिकूट, त्रिकूट इति विश्रुतः। संकट में पड़ गए। काहे संकट में पड़ गए? आए हाँ, काहे पकड़ लिया? वो गए थे पानी पीने के लिए, बहुत घाम था, बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे, वो पानी पी करके हटे नहीं। पानी तो खूब पी, इसके बाद क्या करने लगे? अब अपने पत्नियों को स्नान कराने लगे। हम बहुत आसक्त होते हैं, हाथी का स्वभाव है, बहुत आसक्त। तो खुद भी डुबकी लगा सकते थे, लेकिन सूर से पानी उठा उठा करके डाल रहे हैं। और एक पत्नी होती तो जल्दी हो जाता। गजराज पकड़ लिया तो बहुत अपना जोर लगाए, लेकिन इनको समझ में आ गया कि गजराज का फंदा नहीं है, विधाता का फांसा है। तब तो भगवान की स्तुति करने लगा, लेकिन आप उनकी स्तुति को सुनेंगे तो शुरू में तो संकट से मुक्ति के लिए ही स्तुति की है, लेकिन बाद में उसी स्तुति में कह रहे हैं कि ना, हमको ये संकट से मुक्त होने की इच्छा नहीं है। तो भगवान के माधुर्य का स्मरण करके, स्तुति में ही भगवान के माधुर्य का स्मरण कर रहे हैं, तो अब माधुर्य से इतना आकृष्ट हो गए कि अब संकट दूर करने की इच्छा समाप्त हो गई। तो भगवान की कृपा है। और कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु ग्रुप का उदाहरण दिया गया सौनकादि ऋषियों को। सौनकादि ऋषियों का परिचय कौन देगा? मायापुरवासी सौनकादि ऋषि कौन थे, उनके विषय में एक दो वाक्य बोलिए। आए पता नहीं है, जगत पालक सौनकादि ऋषि, इधर दे दीजिए पूर्णानंदी को। तो उसको ठीक कर लीजिए जरूरत
है। उनके हेड थे, जो
हेड है, प्रधान है,
प्रधान थे, जो कि क्वेश्चन कर रहे थे सुध गोस्वामी।
ठीक, तो ऋषि लोग यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन सूत गोस्वामी वहां मिल गए तो अब यज्ञ की इच्छा समाप्त हो गई, अब भगवान के भक्ति में लग गए। तो सूत गोस्वामी के संग से, उनके कृपा से, अब उनका जो जिज्ञासा था वो सब समाप्त हो गया और शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। पहले उनके मन में स्वर्ग की इच्छा थी, यज्ञ कर रहे थे, पर इच्छा समाप्त हो गई और कथा का श्रवण किए, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। और अर्थार्थी ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के मन में क्या इच्छा थी? जगत पालक वो घर से निकले किस इच्छा से?
घर से जब निकले तब उनकी इच्छा ये थी कि मुझे भी अपने पिता से जो गोद में बैठे, मतलब उससे भी ऊपर से
हमें पिता और पितामह से भी उत्कृष्ट राज्य चाहिए,
राज्य चाहिए।
तो उसके लिए घर से निकले, भगवान की भक्ति किए और घर से नहीं, वहाँ मधुबन से लौट करके घर जा रहे थे, तो उनके मन में क्या इच्छा, क्या विचार आ रहा था?
उनके मन में ये विचार आ रहा था कि मैं कांच का टुकड़ा खोजने निकला था, फिर मैं हीरा मिल गया, मतलब भगवान स्वयं उनको दर्शन दे दिए, उनके गोद में बिठा दिया, तो इससे बढ़ गया और क्या, मतलब उनके सब भक्ति करने के बाद में उनके जो मन में जो,
तो खुश थे लौटते समय, वे प्रसन्न थे कि उदास थे?
प्रसन्न थे,
प्रसन्न। कौन कह रहा है कि उदास थे? बगल में दे दीजिए माइक। क्यों उदास थे?
क्योंकि उनको फिर से अब राज्य करना पड़ेगा, उनको राज्य करना पड़ेगा, भगवान से साक्षात मिल गए, उनके साथ जाना ज्यादा अच्छा था, इन स्पाइट ऑफ कि हमें अब फिर से राज्य करना पड़ेगा 36,000 साल, इस बात को लेके वो दुखी थे। और भगवान ने उनको ध्रुव नहीं बोला, ऐसा बताते हैं, ध्रुव नहीं बोला, किसी प्यारे संबोधित नहीं किया, उसको राजा का पुत्र बोला था ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज को दुख हो रहा था कि मुझे फिर से राज्य करना पड़ेगा, भगवान के साथ नहीं जा पा रहा, ये चीज थी।
अब ध्रुव को ही दे दीजिए, यही बतला रहे कि अब दूसरे
उनको ये दुख था कि मैं गलत मोटिवेशन के साथ भगवान को, मतलब मैं अपनी सौतेली माँ के प्रति द्वेष की भावना भी रखा भजन के समय, सब गलत मोटिवेशन से भगवान का जो भजन किया उसकी ग्लानी,
उनके मन में ग्लानी आ रहा था कि भजन तो मैं किया लेकिन उद्देश्य ठीक नहीं था। अब हमारे मन में राज्य की इच्छा थी और एक तरह से कह रहे हैं कि मैं राज्य क्या मांग किया और भगवान तो भवच्छि दे, अबे तो मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन देवर विदूषिता, देवता लोग हमारे बुद्धि को बिगाड़ दिए और उनको संताप हो रहा था कि नारद जी समझा रहे थे कि अरे मान अपमान नहीं कुछ होता है, लेकिन हम ठीक के चेतना में भक्ति नहीं की, उनके मन में राज्य की अभिलाषा थी तो इसलिए वे ग्लानि महसूस कर रहे हैं। और भगवान के दर्शन होते ही उनकी इच्छा समाप्त हो गई राज्य की, तो वे भी शुद्ध भक्त के स्तर, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। और एक ग्रुप है ज्ञानी, इसके उदाहरण है सनकादि ऋषि लोग। संतादि ऋषि लोगों को देह और आत्मा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनको ब्रह्म सुख का लोभ था, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण किए, तुलसी दल का ग्रहण किए तो उनकी वह इच्छा समाप्त हो गई, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। तो कह रहे हैं कि तत्र गीता दिशु उक्ता नाम चतुराणाम अधिकारिणाम मध्य जस्मिन भगवत कृपा सत्प्रियस्य वा। ये चार प्रकार के अधिकारी हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, उन पर भगवान की कृपा हो जाए या भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो उनकी वासना क्षीण हो जाती है और सात शुद्ध भक्ति अधिकारीवान। तो ये चार व्यक्ति के विषय में नहीं कहा गया है, चार ग्रुप के ये उदाहरण है, ये जो चार उदाहरण दिया जा रहा है तो इनके विषय में बात नहीं है। ये जो चार ग्रुप है ना, कौन कौन, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, इनके विषय में यह बात कही जा रही है। भगवान या भगवान के कृपा से उनकी वासना छीन हो जाए, वासना समाप्त हो जाए तो शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं। और जब तक वासना है तो शुद्ध भक्ति से नीचे का स्तर है। और इस विषय में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसको आप लोग एक बार पीछे से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। जब तक हृदय में भुक्ति की इच्छा, श्रीनिवास भुक्ति की इच्छा समझ रहे हैं, हम तो संस्कृत समझने लगे ना, भुक्ति मतलब भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा, ये जो दो इच्छा हृदय में है तो इच्छा को शब्द क्या दे रहे हैं कि ये दो इच्छा रूप पिशाची हृदय में है तो भक्ति के सुख का अभ्युदय नहीं होगा। जब तक हृदय में भोग की इच्छा है और मोक्ष की इच्छा है तो भक्ति का सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। वे क्यों नहीं सुख का अनुभव होगा, भोग की इच्छा है तो भक्ति के सुख का अनुभव क्यों नहीं होगा। शुभ कृष्ण अनंत,
भक्ति में भक्ति में सुख तब मिलता है जब कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा हो, जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो रेस्पोंडेशन।
हाँ, ये तो भक्ति के सुख का कैसे निष्पादन होता है, सृजन होता है, यह प्रश्न नहीं है। या तथ्य यह है कि हृदय में जब तक भोग की स्प्रिया है या मोक्ष की स्प्रिया है तो भक्ति का सुख उदित नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा। केवल हृदय पर विचार करके इसका उत्तर दीजिए। देखिए, वो हृदय एक स्थान है, भोग की स्प्रिया है तो हृदय को वही ढके रहता है, बहुत बहुत भोग की स्प्रिया आती रहती है, भोग की स्प्रिया का अंत होने वाला नहीं है। इस विषय में प्रसिद्ध युक्ति है कि एक व्यक्ति के संसार के सारे भोग को दे दिया जाए, खाने पीने का जो भी सामान है, जितने भी स्त्रियां हैं, फिर भी उसको संतोष नहीं होगा। तो हृदय भोग की इच्छा से ढका रहता है। जीव गोस्वामी का शब्द है आवृत। अब भोग की इच्छा से आवृत है तो वहां भक्ति का सुख प्रकाशित नहीं होता। और मोक्ष की स्प्रिया है तो हृदय को अपने तरफ खींचा रहता है। अब हृदय को फुर्सत ही नहीं है, वो अपने तरफ खींचे रहता है, उन्मुख किए रहता है, इसलिए भक्ति के सुख का वहां प्रकाशन नहीं हो पाता है। ध्यान देने की बात है कि भक्ति करने से तो भोग मिल ही जाता है। आप लोग सुने ना, वैसायिक सुख भी प्राप्त हो जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है, ब्रह्म सुख भी हो जाता है। तो आदमी इच्छा न करे फिर भी यह तो मिल ही जाएगा, इसकी कमी नहीं है। ते टोटल बेवकूफी है ना कि इच्छा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में तो कहा गया है कि इच्छा न करने पर भी वो भक्ति का फल पीछा नहीं छोड़ता है, बल्कि जो लोग इच्छा नहीं करते हैं उनके पीछे और वो भोग लगता है, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनके और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो भक्ति के सुख के संदर्भ में कह रहे हैं कि जब तक हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा रूप पिशाची है तब तक भक्ति के सुख का प्रकाशन नहीं होता, वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। भोग की इच्छा को और मोक्ष की इच्छा को पिशाची कह रहे हैं। पिशाची का क्या अर्थ होता है? भूतनी कुछ ठीक भूतनी का कुछ लक्षण कुछ और उसका विषय में बतलाइए। उसके
जब भूत किसी अभूतनी जब किसी पे किसी के दिमाग पे चढ़ जाता है किसी सत्य, तो वो अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है।
अच्छा,
वो अपने मन में नहीं रहता, वो किसी और अपने आप को भूल जाता है और वो उसके अनुसार आचरण करने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में रह के वो उसी जैसा आचरण कराने लगती है।
बाबा कुछ बतला सकते हैं, किसी को पिशाच का आवेश हो जाता है तो उसका क्या लक्षण आता है?
जिसको पिशाच पकड़ लेता है तो पहले तो अपने काबू दिमाग उसका स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा अकबक अकबक करते रहता है। और
तो अकबक काहे करता है, कौन कराता है अकबक? उससे
पिशाच कराता है,
पिशाच कराता है। तो एक तो वो पिशाच के कंट्रोल में हो जाता है। अब आम लोगों के यहाँ प्रचलन में कोई भूत से ग्रसित व्यक्ति कुछ मांग रहा है, बीड़ी मांग रहा है, अरे वो पिशाच मांग रहा है, दे दो नहीं तो तुम पर लग जाएगा। इसके कई एक ढंग से व्याख्या दी गई है। एक व्याख्या यह है कि पिशाच का कंट्रोल हो जाने पर अब सब चीज वो ग्रहण करता है। कभी कभी देखा जाता है कि उस व्यक्ति को भोजन भी दिया जाएगा और कभी कभी बहुत अधिक खाता है और शरीर बिल्कुल छीण रहता है। ऐसे लोक में प्रचलन के वो सब भूत खा रहा है। तो वैसे ही अब पिशाची हृदय में बैठ जाती है तो भक्ति का रस नहीं अभिद्युत होता, भक्ति पुष्ट नहीं हो पाती। क्या ये अब व्याख्या लोग करते हैं। जीव गोस्वामी का शब्द यही है कि चित्त को आवृत कर लेती है और मोक्ष की स्प्रिया अपने तरफ उन्मुख कर लेता है। दूसरी बात यह है कि भूत पिशाच तमोगुण के हैं, ये बहुत गंदे होते हैं। तो अब जहां भूत का डेरा है तो अच्छा आदमी वहां रहेगा? कोई बहुत कंजस्टेड स्थान रहता है, प्रकाश नहीं है क्या डेरा कोई? अरे वो भूत के डेरा जैसा है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि भोग और मोक्ष के स्प्रिया को पिशाची कह रहे हैं कि उसका स्तर बहुत निम्न है और भक्ति का स्तर ऊंचा है। जैसे भूत के डेरा में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहना चाहता है, वैसे ही भक्ति उस हृदय को पसंद नहीं करती। तो मुक्ति और भक्ति की स्प्रिया ये दोनों भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन दोनों में भी जो मोक्ष की स्प्रिया है वो ज्यादा घातक है। और इसी से भक्त लोग मोक्ष की इच्छा नहीं करते। आप लोग बतलाइए कहीं से कोई उक्ति जिसमें यह व्यक्त किया गया हो कि मोक्ष की इच्छा नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए। गीता से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से या किसी वैदिक साहित्य से कोई भी श्लोक न भी याद हो तो उसका तथ्य बोलिए, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। हाँ, क्या पृथ्वी महाराज कह रहे हैं?
पृथ्वी महाराज
क्या कह रहे हैं? पृथ्वी महाराज
न कामय नाथ, हे नाथ हमें कोई कामना नहीं है। न कामय नाथ तदप्य हम क्वचित, लेकिन कुछ चाहते हैं।
तो क्वचित, हम कुछ नहीं चाहते, कोई कामना नहीं। तो क्वचित में मोक्ष और भोग की स्प्रिया को भी ले सकते हैं, ठीक। अब दूसरा कोई बोले कुछ, कोई उक्ति कहीं से? शुभ कृष्ण बोलिए। चित्र ननाक पृष्ठम न च सार्वभौम। हाँ ठीक ठीक तो अपुनर्भव मोक्ष है और न नाक पृष्ठम। नाक पृष्ठ क्या होता है? स्वर। स्वर को नाक पृष्ठ क्यों कहते हैं? भौतिक जगत का नाक है। नाक, नाक का विच्छेद क्या होगा? आए न ओक, न ओक। क का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मा, ठीक। और दूसरा, हाँ कोई कह दे, दक्ष, ठीक। वो भी सुख है, क मतलब सुख और अ का मतलब
नहीं।
मतलब दुख और न ओक जहां दुख नहीं है। वह स्थान जहाँ दुख नहीं है और उसमें भी जो पृष्ठ हो, पीड़ा हो, ऊंचा हो, तो उसको नाक पृष्ठ कहा जाएगा। क मतलब सुख और अ का मतलब दुख और न अ का मतलब जहाँ दुख नहीं है और उसमें भी जो स्थान श्रेष्ठ है, ऊपर है, उसको नाक पृष्ठ कहते हैं। स्वर्ग के लिए शब्द आता है। ठीक, और कोई उक्ति? हाँ, बहुत सुंदर, जोर से सब लोग बोल दीजिए। तो भक्त लोग न भोग की स्पृहा करते हैं न मोक्ष की स्पृहा करते, खास करके मोक्ष की स्पृहा ज्यादा विरोधी है भक्ति के दृष्टि से। आए ठीक, अब हो गया उसका उसका मुहूर्त समाप्त हुआ। हाँ हाँ पूछिए।
आप भक्ति का एक लक्षण है कि मोक्ष लघुता कृता।
हाँ।
तो जब तक हम साधन भक्ति करते हैं तब तक उस भक्ति के सुख से तो मोक्ष लघुता कृत हुआ नहीं।
हाँ।
तो एक मोक्ष की या मुक्ति की स्पृहा बनी रहना कुछ स्वाभाविक है साधन भक्ति के समय।
हाँ।
और कुछ प्रेरणा भी उसी से मिलती है कि बैक टू गॉड हेड जाना है, मुक्त होना है, संसार दुखमय है तो हाँ। दुखमय संसार से मुक्त होना है, इसी से साधन में मोटिवेशन अच्छी बनी रहती है, नहीं तो कमजोर भी होती है।
हाँ ठीक, तब ये तो वक्तव्य है, क्या कहना है? कोई प्रश्न तो नहीं है।
प्रश्न है कि साधन भक्ति भी उत्तम भक्ति है।
हाँ।
तो फिर भुक्ति मुक्ति स्प्रिया नहीं है, ऐसा कैसे है? जब तक उसको मुक्ति का सुख तुच्छ नहीं हो रहा तो मुक्ति की कुछ स्प्रिया उसके लिए स्वाभाविक है ना।
स्प्रिया स्वाभाविक तो नहीं है, स्प्रिया की संभावना है। अब देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाव भक्ति के प्राप्ति पर ही मोक्ष में है बुद्धि होती है। भाव भक्ति की प्राप्ति पर तो मोक्ष में है बुद्धि होगी, पहले से ही भक्तों के हृदय में मोक्ष की स्पृहा नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम, तो ये जो अन्य अभिलाषा है, तो अन्य अभिलाषा की क्या भक्ति परिभाषा पढ़े? भक्ति के अतिरिक्त दूसरी अभिलाषा, तो ये चाहे मोक्ष की अभिलाषा हो या भोग की अभिलाषा हो, तो भक्ति की अभिलाषा नहीं है ना। और ये उत्तमा भक्ति का ही भेद साधन भक्ति है ना। वो कोई कोई चीज है कि एक स्वतः स्तर आ जाता है, कोई कोई चीज है कि विवेक से उस स्तर को बनाते हैं। अब बुरा मत मानिएगा, अब कोई ब्रह्मचारी कहे अरे भाई अभी तो अब हम जामुनाचार्य के स्तर पर नहीं आए, तो स्त्री की स्पृहा तो स्वाभाविक ही है, इसमें क्या दोष है? तो स्पृहा स्वाभाविक है, फिर भी अपने विवेक से उसको रखते कम करते हैं ना। या कभी कभी ये बैचलर लाइफ का ही सुख इतना अच्छा है कि उसी से हे बुद्धि हो जाती है। बहुत सारे ब्रह्मचारी और ईआईएन वगैरह बहुत टेंशन है, मेंटेनेंस का टेंशन है, ये एक्चुअली ठोस ग्राउंड नहीं है। हम लोग तो बहुत ब्रह्मचारियों से संपर्क है ना, तो अधिकांश लोग ग्राउंड क्या देते हैं, मेंटेनेंस का बड़ा झंझट। ये बहुत मैंने निकृष्ट ग्राउंड है। जब तक यह मन में विचार नहीं आ रहा है कि राग द्वेष बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, कई एक विचार, ये मेंटेनेंस का विचार बहुत बहुत ही निकृष्ट है। लेकिन फिर भी इस विचार से भी बहुत लोग अपने को ब्रह्मचारी रख रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि साथ भाव भक्ति के स्तर पर तो स्वाभाविक हे बुद्धि हो जाएगी, लेकिन अब उसके पहले भी हे बुद्धि उसमें हो सकता है। अरे देखिए, वो भाव भक्ति की तो बात दूर है, साधन भक्ति की बात दूर है। भक्ति में प्रवेश करने के पहले इतना विवेक होना चाहिए कि भोग में हे बुद्धि होना चाहिए। जब तक भोग में हे बुद्धि नहीं होगी, तब तक भक्ति में प्रवेश ही नहीं होगा। इसकी चर्चा हम लोग उपयुक्त समय पर करेंगे। तो कोई भी भक्त है, तो भक्तों में मुक्ति की स्पृहा नहीं होती। देखिए, अब ये बात कह दिए, और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, इसकी हम लोग चर्चा किए थे, वेद स्तुति का श्लोक है, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसंत के चिदपर्गमपिश्वरत परम संग कुल विशिष्ट गृह। कह रहे हैं कि दुरवगम आत्म तत्व निगमाय, भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो उसी को सुगम बनाने के लिए इस प्राकृत जगत में अपने श्री विग्रह को प्रकट किया। दुरवगमात्म तत्व निगमाय, आत्म तत्व अपने तत्व को निगमाय जनाने के लिए, सबको बतलाने के लिए, तवात तनो आप शरीर को इस प्रपंच में लाए हैं। उच्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा, और आपकी जो लीला है तो अमृत के समुद्र के समान है, और परिवर्त परिश्रमणा उसके अनुशीलन से सारा संसार श्रम दूर हो जाता है। भगवान की कथा का अनुशीलन करने से, श्रवण करने से, चिंतन करने से, और न परिलसंत केचित अपवर्ग मपिश्वरत। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, वो अपवर्गम अपि केचित न परिलसंत, इतना सुख मिलता है श्रवण कीर्तन में कि अपवर्ग के भी इच्छा नहीं करते, अपवर्ग भी नहीं चाहते हैं। फिर भोग की बात तो दूर है, तो फिर भी प्रश्न होगा कि अच्छा चाहते तो नहीं है, लेकिन जो है उसका भोग करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह, जो आपके चरण कमल के हंस हैं, तो उनके संग से विशिष्ट गृह, जो भोग है तो उसका भी त्याग हो जाता है, छोड़ देते हैं। घर में जो सुविधा है भक्तों के संग से उसका भी त्याग कर देते हैं। तो अब यहाँ विश्लेषण दिया गया है कि जो अभी संग में नए आ रहे हैं, अभी इंट्री कर रहे हैं, वे भी सुख का त्याग कर देते हैं। तो फिर जो पहले से हैं, जिनके संग में जा रहे, उनके विषय में क्या कहना है, वे तो त्याग किए ही है ना। वैसे एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? उत्तमा भक्ति के। मोक्ष है कि स्पृहा कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए। भगवान इसकी बहुत प्रशंसा किए हैं ना, जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित्य यतन्तिय ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मोक्ष के लिए यत्नशील है तो वही सब वेद शास्त्र पढ़े हैं, वही जानकार हैं, वही सब कर्म किए हैं। लेकिन यही बात है भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास की आवश्यकता है कि भक्ति का इतना व्यापक क्षेत्र है, रोज अब प्रीचिंग करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और राय रमानंद इस बात को कहे तो चैतन्य महाप्रभु को तो वाह आगे कहा यार ये तो बाहरी चीज है, असली चीज कही है। तो भक्ति के महत्व को समझना चाहिए। ये अब एक बार में सब बातों पर ध्यान नहीं जाता है, शुरू में ही प्रतिज्ञा की गई है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उत्तमा भक्ति का लक्षण बतला रहे उसके वैशिष्ट्य को कहने के लिए। तो यह स्टैंडर्ड भक्ति है। आप राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद को पढ़ेंगे तो कई एक स्टेज पर एहो बाय मतलब अभी स्टैंडर्ड से नीचे है, एहो है। यह जब टिप्पणी कह रहे हैं तो यह स्टैंडर्ड है और ये उत्तम। अब जहां से उत्तम कहने लगे तो है तो उत्तम, लेकिन सारे जीव के पहुंच नहीं है वह, वहां तो कुछ विशिष्ट लोग ही पहुंच सकते हैं। तो भक्ति का विभिन्न स्तर है और उत्तमा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में उत्तमा भक्ति का ही भेद साधन भक्ति है। तो यहाँ मोक्ष की स्पृहा नहीं होती है, भोग की स्पृहा नहीं होती है, और उसमें भी मोक्ष और भोग की स्पृहा में मोक्ष की स्पृहा ज्यादा घातक है। तो तत्रापि च विशेषेण गतिमण्वि अनिच्छत भक्तिर हितमन प्राण प्रेमणा तन कुरुते जना। जो मोक्ष की स्पृहा नहीं रखता है तो उस पर भक्ति का प्रभाव आ जाता है, वो भक्ति के सुख का अनुभव करने लगता है। अब मोक्ष त्याज्य है, भक्त लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। अत्र त्याज्यता वे को मुक्ति पंच विधा पीछे सालोक्यादिश तथाप्यत्र भक्त्या नाति विरुद्धते। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो पांचों प्रकार के मुक्ति त्याज्य है, लेकिन अब एक दृष्टि से देखा जाए तो जो चार प्रकार की मुक्ति है सायुज को छोड़ करके, तो भक्ति का बहुत विरोधी नहीं है। तो ये चार प्रकार के मुक्ति, इसका भी गिनती कर देना चाहिए। रसिक बतला सकते हो चार प्रकार की मुक्ति? ध्रुव माइक आप बतलाओ, चार प्रकार के मुक्ति की गिनती करो।
सारूप्य सामीप्य
सारूप्य सालोक्य
सालोक्य सारूप्य
आए
सारूप्य
नहीं हाँ ठीक सारूप एक एक करके सारूप्य सालोक्य श्राष्टी सामीप्य। श्राष्टी का अर्थ है, कौन बतलाएगा? ऐश्वर्य, भगवान जैसा, मैंने कुछ ऐश्वर्य को ऋष्टि कहते हैं। तो चार प्रकार की जो मुक्ति है तो भक्ति का बहुत विरोधी नहीं है, तो इसलिए कुछ भक्त लोग ये चार प्रकार के मुक्ति चाहते हैं। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि सुखैश्वर जो तरा सेयम प्रेम से वो तरा त्यपि सालोक्यादि द्विधा तत्र नाद्य सेवा जिसाम्मता। अभी चार प्रकार के मोक्ष का विश्लेषण कीजिए तो इसको भी दो खंड किया जा सकता है। एक को सुखैश्वर्य उत्तरा कहा गया है, उत्तरा मतलब प्रधान। एक मुक्ति ऐसी है, ऐसा स्थान है कि वहां सुख और ऐश्वर्य की प्रधानता है और प्रेम से वो तरा इत्यपि एक ऐसा स्थान है या मुक्ति का ऐसा भेद है कि उसमें प्रेम और सेवा की प्रधानता है। तो नाद्या सेवा जुसाम्मता, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो सुख और ऐश्वर्य से युक्त मुक्ति को पसंद नहीं करते। सुख और ऐश्वर्य वहां प्रधान है। तो शुभ कृष्ण का प्रश्न है कि तो क्या सालों की इत्यादि मुक्ति मिल जाती है, वहां भी सुख की स्प्रिया है? मुक्ति सालों के मिल गया तो ये तो भाई अप्राकृतिक भगवान के धाम में ही पहुंच गए, तो क्या वहां भी सुख की स्प्रिया रहती है क्या? प्रश्न आपको याद है, कार्तिक में कही किए थे, ये तो प्रश्न आएगा ही, इसका मैं अब उत्तर आज सोच रहा था कि मान लीजिए ये आप खिचड़ी क्यों बनाते थे? क्यों? यही कारण था, वहां जो राजभोग दे दिया जाए भगवान को, जो भोग लगता है काजू डाल करके क्या क्या, तो वो भी प्रसाद ही है ना, और फिर अलग से आप खिचड़ी बनाते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि वो राजभोग खाना या भक्ति नहीं है? एक ये उदाहरण देखिए, प्रसाद का भी ग्रेडेशन है ना, आप राजभोग खाए या और भी गोविंदा से भी आता है तो वो भी तो प्रसाद ही है ना, लेकिन फिर भी कुछ भक्त हैं वो खिचड़ी पसंद करते हैं या साधारण प्रसाद चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि व्यास पूजा होता है, एकदम गुरु लोग अपने पैर धुलाते हैं ना, दूध से धुलाते हैं। अभी मैं गया था व्यास पूजा में परम पूज्य लोकनाथ महाराज के, तो दूध से पैर धोया जा रहा था, मैं भी धोया। तो यह आदमी की पूजा है, आदमी की पूजा नहीं है ना, सिद्धांत यही है ना कि परंपरा का पूजा करते हैं, लेकिन सब गुरु लोग इसको पसंद करते हैं। एक बार हम लोगों के गुरु महाराज भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, वो रथ यात्रा का दिन था, उनका व्यास पूजा का दिन, तो भुवनेश्वर के भक्त लोग खूब अच्छा अच्छा माला ले करके कीर्तन करते, भुवनेश्वर के भक्त कीर्तन करते हैं तो स्टेशन एक बार वैकुंठ ही बन जाता है, बहुत नाच नाच करके कीर्तन करते हैं। और लोग खूब अच्छा अच्छा माला लेकर के गए थे, और इन लोगों को पता था कि महाराज किस डब्बा में है, ए टू में, और अब ये लोग डब्बा में कोई तो महाराज मिल ही नहीं रहे हैं, इधर इधर उधर। तो महाराज जब देखे भक्तों को तो सीधे जनरल डब्बा में चले गए। ये लोग खूब खोज, इनके कल्पना में तो आया नहीं कि जनरल में भी जा सकते हैं, तो जनरल में चले गए। आत्माराम प्रभु अभी जो संन्यास कैंडिडेट हैं या लीडिंग कर रहे थे, उस समय प्रेसिडेंट आए थे, अंत में निराश हो गए, कैसा गुरु है। शुभ कृष्ण का प्रश्न है कि वैकुंठ में सुख सुख ऐश्वर्य उत्तरा, तो वहां भी कुछ सुख की स्प्रिया है क्या कुछ है? लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि राजभोग हो या डिवोटी किचन हो, सब प्रसाद ही है ना, सब का सेवन करना भगवान की भक्ति है, लेकिन फिर भी उसे में बॉयल सब्जी चलता है। तो आप ही बहुत दिन तक खिचड़ी बनाते थे ना, तो उसी तरह वैकुंठ में दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए कि वहां भी वो सुख के है। कोई कोई स्थान है कि वहां ऐश्वर्य की प्रधानता है, सुख की प्रधानता है, लेकिन वहां रहना भी भगवान की सेवा ही है। लेकिन कुछ भक्तों को वैसा पसंद नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो सेवाम जुसाम, भगवान के सेवा से जुटे हुए हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं, और सालों इत्यादि में भी जहाँ सुख और ऐश्वर्य प्रधान है उस मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं। और किंतु प्रेमैक माधुर्य जुषा एकांतिनो हरौ नैवं कुरुते जातु मुक्तिं पंच विधामपि। तो वे ऐश्वर्य और सुख उत्तरा मुक्ति को नहीं पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रेम से उत्तरा मुक्ति है उसको चाहते हैं, जहाँ प्रेम और सेवा ही प्रधान है तो उसको चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि एक ग्रुप है उसको भी नहीं चाहता है, वो पांच प्रकार की कोई भी मुक्ति हो वो कोई नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता है? किंतु प्रेमैक माधुर्य जुषा, जो भगवान के माधुर्य के आस्वादक हैं, माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, तो पांच प्रकार का कोई हो, चाहे प्रेम से उत्तरा हो या सुखैश्वर्य उत्तरा, वो कोई नहीं पसंद करते हैं। और कह रहे हैं कि अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अब वो सालों की इत्यादि मुक्ति की बात दूर है, दूसरे भगवान भी उनके मन को नहीं हरण कर सकते हैं, वैकुंठ नाथ से भी उनको कोई आकर्षण नहीं है, वो मुक्ति और लोक की बात तो दूर है। यद्यपि दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन रस के दृष्टि से कुछ भेद हो भी जाता है। तो इस तरह कह रहे हैं कि कुछ खास करके जो वृंदावन कृष्ण से आकृष्ट हैं, तो किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। अरे मुक्ति की बात तो दूर है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वह कृष्ण के धाम को भी नहीं चाहते हैं। अब वृंदावन में हैं, अब जहाँ हैं बस यहीं रहना चाहते हैं, वो नित्य धाम और क्या क्या उनको कोई मतलब नहीं। तो मुक्ति के स्प्रिया के राहित्य के विषय में भी तारतम्य है। कुछ लोग एकदम कोई मुक्ति नहीं चाहते हैं, कुछ लोग सालों की इत्यादि चाहते हैं जो सेवा के अनुकूल है। तो ऐसे अब ये मुक्ति के विषय में कह करके अब कह रहे हैं कि शास्त्रतः सूयते भक्तो नृमात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिता माघस्नाशस्य ब्रुवता यतः दृष्टान्तिता वशिष्ठेन हरिभक्तौ नृपम प्रति। आप लोग अब ग्रंथ खोलिए, पांचवा अध्याय खोल करके जिसके पास माइक है थोड़ा सा पढ़िए, अध्याय पांच। किसके पास माइक है?
अध्याय पांच, भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशनों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है, अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और एक किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती।
अहेतुकी और अप्रतिहता का ही अनुवाद किया जा रहा है। कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। हाँ, एक लाइन और पढ़िए।
यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है।
जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। वह रंग रूप साइज या भक्ति को नहीं रोक सकता। कोई काला है, गोरा है, कैसा कपड़ा पहना है, भक्ति को भौतिक परिस्थिति नहीं रोक पाती है। इस विषय में हम लोगों के जो टीचर थे उर्मिला माता जी, वे एक उदाहरण दी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी का प्रोग्राम एक क्लब में किया गया अमेरिका में, और प्रभुपाद जी को कुछ क्लब का उतना क्लियर आइडिया नहीं था। वो प्रोग्राम स्वीकार कर लिए। अब जब क्लब में गए तो वहाँ स्त्री पुरुष मैंने लगभग नग्न अवस्था में थे। अब तो मैंने श्रील प्रभुपाद जी को घुसते उसमें भारी कठिनाई, लेकिन प्रोग्राम था तो आंख मूंद करके जय राधा माधव का प्रवचन किए। उसी ग्रुप से तमाल कृष्ण महाराज भक्त बने। जहां आंख खोलना कठिन हो रहा था ऐसे लोग थे, लेकिन प्रवचन किए उसके बाद वहीं से तमाल कृष्ण महाराज निकल करके आए, जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे बहुत दिन तक। तो भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। इसे भगवान कहीं अवतार लेना चाहे तो कोई रोक सकता है। आगे पढ़िए। रक्षक बोलो।
मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के विरोधान के पश्चात,
और थोड़ा जोर से,
मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है।
क्या क्या वो दावा करने लगे? ठीक 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 है। क्या पढ़े ध्रुव? बोलो माइक माइक लेकर के।
वो अपने वंश तक या अपने लोगों तक भक्ति को सीमित कर रहे थे।
नित्यानंद महाप्रभु के वंशज लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भक्ति का अधिकार तो केवल हम लोगों तक। माइक इधर दे दी पूर्णानंदी को। आगे पढ़ो, जहां तक वे पढ़े उसके आगे।
इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अभी यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है।
और आगे,
पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सत्वगुण पद से पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं ना ही विविध शास्त्र ही।
भक्ति एक सीमित ग्रुप तक निहित है। भक्ति का अधिकार एक खास वर्ग के लोगों का ही है। इसको श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं। क्यों ये नहीं मानते हैं?
रूप गोस्वामी और लेकिन साथ इसका
दो कारण दे रहे हैं, एक एक करके बतलाइए। रूप गोस्वामी माइक लेकर के बोलिए।
श्रील रूप गोस्वामी आज जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं,
और पहले ही कहा जा चुका है कि यह जो आंदोलन है कृष्ण भावना अमृत, ये रूप गोस्वामी के प्राधिकार पर उनके अथॉरिटी पर आधारित। तो रूप गोस्वामी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि भक्ति का अधिकार कुछ खास लोगों तक ही है। तो एक बात हुई, और दूसरी बात और एक कह रहे हैं, शास्त्रों में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि तिलक लगाने का, कंठी धारण करने का अधिकार कुछ सीमित लोगों का। ये केवल सुनी हुई बात नहीं है, इन्हें प्रत्यक्ष मैं अपने कान से सुना हूं, अनुभव किया हूं। एक बार की घटना है कि मैं मुगलसराय स्टेशन पर आ रहा था, और हम लोग तो जब पढ़ रहे थे उसी समय तिलक लगाते थे, कंठी लगाते थे, और कुछ लड़के नमस्कार किए तो एक दूसरा लड़का कह रहा है, अरे साला ब्राह्मण नहीं है ऐसे ही तिलक लगाया है तो धारणा है कि केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि रूप गोस्वामी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया। शास्त्र का क्या सिद्धांत है? तो अब इसको कह रहे हैं कि शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारतः। ये शास्त्र में यही सुना जाता है कि मनुष्य मात्र का अधिकार भक्ति में, चाहे वह किसी लिंग का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, मनुष्य है भक्ति के लिए अधिकारी है। और सर्वे दृष्टांतिता वशिष्ठे न हरि भक्ति नृपम प्रति। इसको वशिष्ठ जी राजा दिलीप के प्रति एक प्रवचन में दृष्टांत बनाए हैं। दृष्टांत का अर्थ है कि जो चीज स्थापित है और उसके आधार पर कोई दूसरी स्थापना करते हैं तो उसको दृष्टांत कहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि एज श्योर एज डेथ, तो डेथ स्थापित है कि मृत्यु होनी ही है, तो इसको दृष्टांत कहा जाएगा। तो उसी प्रकार माघ स्नान के विषय में प्रवचन कर रहे थे। कौन प्रवचन कर रहे थे? वशिष्ठ जी। श्रोता कौन थे? राजा दिलीप। तो कह रहे थे कि माघ महीने माघ स्नान में सबका वैसे ही अधिकार है जैसे भक्ति में सबका अधिकार है। जैसे भक्ति में सबका अधिकार है वैसे ही माघ स्नान में सबका अधिकार है। माघ स्नान का क्या मतलब है?
माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करता है।
कुछ लोग संकल्प लेते नियम लेते हैं कि एक महीना सूर्योदय के पहले हमको स्नान करना है, या जो भी गंगा जी में स्नान करना है, स्नान का नियम लेते हैं। तो ये प्रश्न होगा कि कौन नियम ले सकता है, तो वशिष्ठ जी कह रहे थे कि कोई भी ले सकता है, सबका इसमें अधिकार है। जैसे भक्ति करने में सबका अधिकार है, तो वैसे ही माघ स्नान में सबका अधिकार है। तो इस वक्तव्य से तो स्पष्ट हो रहा है ना कि भक्ति में सबका अधिकार है, ये स्थापित बात है। और वे इसके लिए एक श्लोक भी उद्धृत कर रहे हैं कि अंत्यजाय पितद्राष्ट्रे शंख चक्रांक धारिण संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षा दीक्षिता इव संबभु। ये मयूर ध्वज राजा के राज्य का वर्णन करते समय कह रहे हैं कि अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे। अंत्यज, अंत्यज किसको कहते हैं, जो चारों वर्ण से बाहर है, आउटकास्टेड जिसको कहते हैं। चार वर्ण है लेकिन कोई कोई इतना निम्न स्तर का है को चारों वर्ण से बाहर रखा जाता है, उसको अंत्यज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अंत्यजा अपि, यह नहीं कह रहे हैं कि अंत्यज। कुछ लोग ये भी सिद्धांत देते हैं कि यार ये नाच गान ये सबके लिए थोड़े है, ये ब्राह्मणों का थोड़े धर्म है कि ऐसे ही नाचते गाते रहे, ये तो थर्ड क्लास लोगों का काम है। ये कह रहे हैं कि अंत्यजा अपि, अंत्यज भी का अर्थ है तो चार वर्ण वाले तो भाई हैं, अंत्यज भी तद राष्ट्र, उनके राष्ट्र में शंख चक्रांक धारिण, वे शंख और चक्र का चिन्ह धारण करते थे। हम लोग तो ऊर्ध्व पुंड तिलक धारण करते हैं, कोई कोई वैष्णवों का संप्रदाय है जैसे श्री संप्रदाय के लोग हैं, वे चक्र का चिन्ह धारण करते हैं, शंख का चिन्ह धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि वे शंख चक्र का चिन्ह धारण किए हैं और संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा, और वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके दीक्षिता इव संभव। जैसे कोई यज्ञ में दीक्षित होता है वैसे सुंदर लग रहे थे, तो अंत्यज व्यक्ति भी तिलक धारण किया, वैष्णव चिन्ह धारण कर रहा, दीक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भक्ति में सबका अधिकार है, इसमें जाति पाति का भेद नहीं है, सबका अधिकार है। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं कि अनुष्ठान तो दोषो भक्त्यांगा नाम प्रजायते न कर्मणाम अकरणात ऐसा भक्त अधिकारीणा। जो भक्ति के अधिकारी हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का आचरण न करें, भक्ति का अभ्यास न करें तो यह तो दोष है, लेकिन अपने कर्म का आचरण न करें तो यह कोई दोष नहीं है। निषिद्धाचार तो दैवत, और जैसा मैं कल कहा कि किसी तरह कोई पाप भी बन जाए तो अलग से विकर्म कुछ हो जाए तो प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति सबके लिए आवश्यक है। भगवान कहे हैं कि जो व्यक्ति हम जो उपदेश दिए हैं और उसका भी त्याग करके मेरी भक्ति कर रहा है तो सत्तम वह सबसे श्रेष्ठ है। आज्ञा एवं गुणान दोषान ममादिष्टा नपीश्वकान धर्मान संतज्य यह सर्वान माम भजेत सत्तम। कह रहे हैं कि गुण दोष पर विचार करके और मया दिष्टान अपि स्वकान, मैं जिस धर्म का आदेश दिया, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उपदेश दिया धर्म का पालन करने का, लेकिन गुण दोष विचार करके और हमारे द्वारा उपदिष्ट धर्म का भी त्याग करके माम भजित सत्तम सब धर्म को छोड़ दिया और मेरी भक्ति कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है। यह भक्ति की महिमा है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो न देवता के प्रति ऋणी है, न पितर के प्रति ऋणी है, न ऋषि के प्रति ऋणी है, भक्ति कर रहा है तो उसका सब कर्तव्य पूरा हो गया, उसके कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। तो यह भक्ति की महिमा है, यह लक्षण है, यह स्वरूप है। अब भाई प्रश्न होगा कि भक्ति का आचरण कैसे किया जाता है, कैसे भक्ति करते हैं। तो कल हम लोग सुने थे कि भक्ति का बहुत वर्गीकरण किया गया, हम लोग साधन भक्ति पढ़ रहे हैं, तो साधन भक्ति का भी दो भेद है, कौन कौन, वैधि और रागानुगा। तो अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ है, शास्त्र के आदेश से, शास्त्र के आदेश से ही भक्ति कर रहे हैं तो इसको वैधि भक्ति कहा जाएगा। और सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं हरिभक्ति विलास, तो उसमें वे लाखों प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है, लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम अपने मति से उसी में से छांट करके 64 भक्ति का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। लाखों प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया हरिभक्ति विलास में, लेकिन उससे अपने मत के अनुसार रूप गोस्वामी 64 प्रकार के भक्ति का उल्लेख किए हैं। तो 64 प्रकार के भक्ति का भी तीन भेद है, 64 प्रकार के भक्ति को तीन खंड में बांटे हैं। 10 को प्रवृत्ति कहा गया है और 10 को निवृत्ति कहा गया है। 10 और 10 जो 20 हैं, इसी को भक्ति का दरवाजा कहा गया है। भक्ति में इसी 10 साधन के द्वारा आप प्रवेश करेंगे, मतलब यह बहुत आवश्यक है। ये जो प्रारंभ रूपता, खास करके जो 10 प्रकार की भक्ति है, तो यही प्रारंभिक भक्ति है, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। और 10 निवृत्ति है, इसको दोनों को लेकर के 20 हुआ, तो इसको कह रहे हैं कि द्वार रूप है, भक्ति में प्रवेश करने का दरवाजा यही है। लेकिन इसमें भी जो शुरू के 3 है तो सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर इसके अतिरिक्त 44 भक्ति हैं, जिसमें 5 भक्ति का उल्लेख किया गया, वो सबसे प्रबल है, सबसे शक्तिशाली है। इस अर्थ में कि उसका थोड़ा भी आचरण करने से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये साधन भक्ति का एक विवरण है कि 64 प्रकार की भक्ति क्या क्या है, एक बार इसका गिनती कर लें, फिर इसके स्वरूप को समझेंगे। तो आप ये भक्ति का गिनती करना चाहते हैं तो अब 6 अध्याय खोल लीजिए। पढ़िए, 6 अध्याय को पढ़िए, माइक जहाँ है वहीं से पढ़िए।
श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी इन सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। उदाहरण था,
अब एक महत्वपूर्ण बात आ गई। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रूप गोस्वामी केवल सिद्धांत का उल्लेख कर रहा है। आए? क्या मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कर रहे हैं, उसके विस्तार का वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो वही एक प्रश्न उठेगा कि यह सिद्धांत क्या होता है और विस्तार क्या होता है। दो चीज कह रहे हैं ना कि सिद्धांत का उल्लेख कर रहे हैं, विस्तार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो सिद्धांत क्या होता है, विस्तार क्या होता है? जिस चीज का किसी भी स्थान या समय या परिस्थिति में परिवर्तन न किया जाए तो उसको सिद्धांत कहा जाएगा। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अब उसको कैसे लागू किया जाएगा तो इसको विस्तार कहा जाएगा। तो सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विस्तार में कुछ परिवर्तन हो सकता है। एक दो उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे जप करना सिद्धांत है, भक्ति में है जप करना सिद्धांत है, लेकिन अब कुछ लोग मंदिर में बैठ करके जप करते हैं और किसी की कुछ सेवा है तो जाते हुए रास्ते में भी जप कर लेता है, या कोई कोई सुबह जप करते हैं और कोई कोई संध्या को जप करते हैं। तो जप करना सिद्धांत हुआ, लेकिन कब जप कर रहे हैं, कैसे जप कर रहे हैं, इसको विस्तार कहा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? गुरु की सेवा करना सिद्धांत है। कोई भी शिष्य है तो उसका धर्म है गुरु की सेवा करना, लेकिन सब लोग एक जैसा तो सेवा नहीं कर सकते। कोई सन्यासी गुरु है तो स्त्री जाकर के पैर नहीं दबा सकती, लेकिन उसके लिए भी अवकाश है, भोजन बना सकती है, रूम की सफाई कर सकती है। तो गुरु की सेवा करना यह सिद्धांत हुआ, कैसे सेवा करेंगे यह विस्तार हुआ। समझ रहे हैं? तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी आपके परीक्षा का ये प्रश्न भी बन जाता है, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। हाँ चलिए आगे पढ़िए।
उदाहरण था, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु से कार्य करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है तो उसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वथा अच्छा है, भले ही विस्तार।
अब गुरु स्वीकार करना है यह सिद्धांत है, गुरु के आदेश का पालन करना यह सिद्धांत है, लेकिन गुरु के आदेश में भिन्नता हो सकती है। एक ही गुरु है, अलग अलग शिष्यों को थोड़ा भिन्न भिन्न निर्देश दे सकता है, अलग अलग सेवा दे सकता है, या अब अलग अलग गुरु हैं तो उनके आदेश में भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, तो उसको विस्तार कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करना या गुरु के आदेश का पालन करना ये सबके लिए लागू होगा, तो इसको सिद्धांत कहा जाएगा। तो रूप गोस्वामी यहाँ सिद्धांत का उल्लेख कर रहे हैं, विस्तार का उल्लेख नहीं कर रहे। हाँ और आगे पढ़िए।
श्री गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर हमारे समझ केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं।
ठीक, माइक दे दीजिए दूसरे को, वो दीपिका को दीजिए, पढ़ो आगे।
वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं।
इतना जोर से पढ़ो कि पीछे वालों को श्रीनिवास को भी सुनाई दे।
वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सेकंड, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना श्रद्धापूर्वक तथा।
हाँ, तीन भी लिखा है ना, तो अभी तीन भी पढ़ो, वो भी लिखा है ना।
तीन, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना।
तो ये जो प्राथमिक दस प्रवृत्ति है तो उसमें से तीन शुरू का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या तीन है?
एक प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना।
हाँ ठीक, नहीं एक कहीं बस एक आप बोलिए, दूसरा दूसरे व्यक्ति बोलिए।
गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना।
अच्छा ठीक, और तीसरा?
श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना।
तो तीन का नाम जान गए ना, श्रीनिवास तो इसको संस्कृत में कहा गया है कि गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण विश्रम्भेण गुरु सेवा। ये तीन गुरु से ही संबंधित है। गुरु का आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा ले करके शिक्षा ग्रहण करना, और इतना से काम पूरा नहीं हो गया, गुरु की सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये 64 अंग में सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक, अब आगे पढ़ो। हाँ यही तीन है।
चौथा, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। पांचवा, कृष्ण भावनामृत पर अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। छठा, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो।
ठीक, आगे।
सातवा, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करना। आठवा, केवल भगवान वस्तु को केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नवा, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा दसवा, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना।
दस प्रारंभिक भक्ति है। हमको श्रीनिवास की चिंता है। वो छ ही गणित उनको कठिन लग रहा था, अभी 64 का गणित चालू हुआ। कई एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, क्योंकि नई बात नहीं है। ठीक है, साथ हम याद कर लेंगे। जगत पालक आगे पढ़िए, माइक दे दीजिए।
विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे हैं, पहला, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। तीसरा बहुमूल्य मंदिर या मठ बनाने में अधिक उत्साह न दिखाना। चौथा न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवद गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने का धारणा को विकसित करना। पांचवा सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। छठा सती होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। सातवां देवताओं का अनादर न करना। आठवां किसी जीव को व्यक्त कष्ट न पहुंचाना। नवा भगवान का नाम संकीर्तन करने या मंदिर में अर्चक विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। दसवां भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को भी सहन न करना, कभी भी सहन न करना।
दस निवृत्ति है, दस सुन लिए लेकिन इसमें से कुछ को बोलिए, इस दस में से एक दो बोलो रक्षक, दस में से एक दो को बोलिए। जो दस निवृत्ति है इसमें से जितना बोल सकते हैं उतना बोलिए, क्या क्या निवृत्ति है।
महाराज आप भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग।
ठीक, और
महाराज जो समझ में नहीं आया वो ये नहीं आया
नहीं समझने के बाद तो अभी दूर है, एक एक को फिर से विचार किया जाएगा ना, अभी लिस्ट तैयार कर दीजिए।
भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश ना देना। बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना।
और ठीक है, संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुख ही जनय, जो भगवान के विमुख हैं तो उनका दूर से संग त्याग करना एक निवृत्ति हुआ। शिष्यादि अनुबंधित्व महारंभाद्य अनुद्यम, शिष्य इत्यादि को बांधना या उनमें बंधना इसका त्याग करना होता है, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेना इसका त्याग करना होता है भक्ति के लिए। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जन, बहुत बहुत कला सीखना ये वाद विवाद करना इसका त्याग करना होगा। व्यवहार प्रकारपण, और व्यवहार में बहुत कृपण नहीं होना चाहिए, कृपणता का त्याग करना होगा। कृपण मतलब कंजूस, कंजूस और गरीब में अंतर होता है। गरीब उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, और कंजूस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास संसाधन है और उसका उपयोग नहीं कर रहा। यह प्रश्न तुम पूछ दे तो चलेगा, दूसरे को तो नहीं पूछना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्जुन कह रहे हैं कि हम कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे हैं। कार्पण्य दोष क्यों कह रहे हैं, उनमें लड़ने की क्षमता है, चाहे तो मैंने अकेले ही सबको मार डालें, लेकिन ये महसूस कर रहे हैं कि गांधी भी नहीं संभल रहा है, तो हमारी क्षमता नहीं काम कर रही है ना। वो कह रहे हैं कि हम धर्म के विषय में तो मूड हो रहे हैं, अरे अर्जुन तो वीर थे और लड़ने में समर्थ नहीं, तो उतने बड़े वीर थे लेकिन पसीना छूट रहा था, कांप रहे थे, तो वे तो कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। लेकिन कहते हैं कि गीता सबके लिए है, हम लोग कौन योद्धा है, हम लोग बहुत बड़े पहलवान हैं और नहीं लड़ रहे हैं। तब हम लोगों के स्तर पर देखा जाए तो कार्पण्य का अर्थ है कि बहुत भारी संपत्ति मिला है, ये जो मनुष्य देह है वो बहुत भारी संपत्ति है और इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह कार्पण्य दोष है। इस शरीर के विषय में लिखा है मल्लक्षण मिमम कायम, ये जो शरीर है तो भगवान को समझने के लिए, भगवान बहुत बहुत शरीर बनाए लेकिन तय तय रतुष्ट हृदय, वो मछली बनाए पक्षी बनाए जो आकाश में उड़ सकते हैं लेकिन तय तय रतुष्ट हृदय, बहुत प्रकार के सृष्टि किए, मच्छर बनाए सांप बनाए लेकिन हृदय उनका संतुष्ट नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर निर्माण किए तो मुदम अवाप उनको प्रसन्नता हुई, क्यों कि ब्रह्मावलोकधीषण, ये जो मनुष्य शरीर है इसमें ऐसी बुद्धि भगवान दिए हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अब इसका जो उपयोग नहीं कर रहा ये संपत्ति का, तो वह कृपण हुआ। तो कृपण और गरीब में अंतर होता है, गरीब के पास पैसा ही नहीं खर्चा क्या करेगा, लेकिन कितने लोगों के पास पैसा होता है और घर के लोग बीमार है, पत्नी बीमार है फिर भी पैसा नहीं खर्चा करते, उसको कृपण कहा जाता है। और कृपण से भी एक डिग्री आगे कुछ लोग हैं उनको मक्खी चूस कहा जाता है। मान लीजिए कि मक्खी कोई तेल में गिर गई तो वो तो अब उसी में फदफदाने लगती है, तो कुछ लोग हैं कि मच्छी को निकाल करके फेंक देंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके पंख में तो कुछ तेल जा रहा है उसका तेल को निचोड़ेंगे उसको मक्खी चूस कहा जाता है। तो भक्ति में यदि कार्पण्य रखेंगे तो भक्ति में बाधा पड़ेगी, भक्त हो गए और कृपण है तो भक्ति ठीक से नहीं चलेगी। तो कार्पण्य का त्याग करना ये निवृत्ति का एक अंग है। व्यवहारे प्रकार पर शोकाद्य वशवर्तिता, और इस संसार में है तो ऐसी ऐसी घटना आती रहती है कि कभी मन में शोक का अवसर है कभी विषाद का अवसर है, लेकिन इसके वशीभूत नहीं होना है, ये अवसर आता रहता है। अब कभी लड़के का सिलेक्शन हो गया तो अब तो प्रसन्नता है, और बेटा पतोह में कुछ झगड़ा हो गया तो लेकिन कुछ भी हो तो शोक के बस नहीं होना है। या यहाँ तक कि स्वजन का निधन भी हो गया फिर भी शोक के बस नहीं होना, ये शोक और हर्ष का बस होने का त्याग करना। और अन्य देवन अवज्ञा च, किसी भी देवता की अवहेलना करना इससे बचना है। भूतानुद्वेगदायिता, दूसरे जीव को कष्ट देना इसका त्याग करना है। और सेवा नामा पराधा नाम उद्भवा भावकारिता, ऐसे जीवन जीना है कि सेवा पराध नामा पराध या वैष्णव अपराध हो ही नहीं। हम लोग प्रश्न करने लगते हैं महाराज ये अपराध हो गया तो क्या करना चाहिए। साधन भक्ति का अर्थ है कि अपराध होना ही नहीं चाहिए, उद्भव अभाव कारिता, समझना संस्कृत का शब्द न, उद्भव का ही अभाव होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि नामापराध सेवा अपराध वैष्णव अपराध बने ही न। और कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंदाद्य सहिष्णुता, कि कृष्ण या कृष्ण के भक्त का कोई दोषी द्वेषी है और उसके द्वारा निंदा को न सहना। व्यतिरेके व्यतिरेकतया मिशाम दशानाम स्यात् अनुष्ठिति, इसको व्यतिरेक विधि से पालन करते हैं, इसका संपादन करते हैं। आपको फिर से याद करना चाहिए अनुशीलनम, ला सकते हो चार्ट, अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम, ये सब अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुद्रम। तो अनुशीलन कि हम लोग चार्ट बनाए थे, तो अनुशीलन का दो रूप था, कौन कौन, चेष्टा और भाव। लेकिन चेष्टा भी दो स्तर का, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये चेष्टा का तीन स्तर है, कौन कौन, कायिक वाचिक मानसिक। लेकिन दोनों, ये तीनों का दो भेद किया जा सकता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रत्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। तो ये जो दस अंग दिया जा रहा है ये निवृत्त्यात्मक है, इससे बचना होता है, यही भक्ति है। और इसका ठीक से पालन करेंगे तो भक्ति में ठीक से उन्नति होगी, और इसका ठीक से नहीं पालन करेंगे, ये 10 और 20 के लिए है दोनों मिला करके, इसका ठीक से पालन नहीं करेंगे तो भक्ति में उन्नति नहीं होगी। तो इस दृष्टि से ये 20 का बहुत महत्व है। इसको कहा गया है कि अस्या तत्र प्रवेश प्रवेश आया द्वारत्य अंग विंशते। ये जो 20 अंग है, 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति, तो यही भक्ति के प्रवेश का दरवाजा है, इसी से भक्ति में प्रवेश पाते हैं। ये अपने आप में भक्ति का अंग है और उच्चतर भक्ति के लिए प्रवेश का दरवाजा है। तो इस दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, 20 का महत्व है। लेकिन उसमें भी जो प्रारंभ के तीन हैं, तो वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह 20 हुआ, अब कितने बचे, 44। तो 44 अब हम पढ़ देते हैं, आप लोग पढ़े बहुत, 44 हम पढ़ देते हैं। तो धृतिर वैष्णव चिन्हाना हरेर नामाक्षरस्य च, वैष्णव चिन्ह धारण करना और भगवान के नाम का अक्षर धारण करना। निर्मालादेश तस्याग्रे तांडवम दंडवन्नति, भगवान का माला इत्यादि धारण करना, भगवान के समक्ष नृत्य करना, उनको दंडवत प्रणाम करना। अभ्युत्थानम, जब पट खुलता है खड़ा हो जाना। अनुव्रज्या, भगवान के पीछे चलना। गति स्थाने, भगवान के मंदिर में जाना। परिक्रमा, मंदिर के या वृंदावन का या धाम का परिक्रमा करना। अर्चनम परिचर्यम च, अर्चन और परिचर्या। गीतम, गीत गाना। संकीर्तनम, संकीर्तन करना। जप, जप करना। विज्ञप्ति, विज्ञापन देना। स्तव पाठ और स्वादो नैवेद्य पादयो, भगवान के पाद्य और नैवेद्य का आस्वादन करना। पाद्य मतलब चरणोदक और नैवेद्य मतलब प्रसाद। धूप माला दिशौरभ्यम, धूप या माला को सुंघना। श्रीमूर्ते स्पृष्टि, श्रीमूर्ति का स्पर्श करना। इक्षणम, श्रीमूर्ति का दर्शन करना। और विज्ञप्ति नहीं, निज प्रियोपहरणम, अपने प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना। तदर्थ कहाँ रह गया, किधर रह गया, आरात्रिक, आत्रिकोत्सवादेश श्रवणम तत्कृपेक्षणम। आरात्रिक और उत्सव दर्शन, ये आरती करना अलग भक्ति है, और केवल दर्शन कर रहे हैं ये अलग भक्ति है। और आरती का दर्शन अलग भक्ति है, उत्सव का दर्शन अलग भक्ति है। श्रवणम, श्रवण करना। तत्कृपेक्षणम, भगवान के कृपा का अवलोकन करना। स्मृति, स्मरण करना, ध्यान करना। दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना। आत्मनिवेदन, अपने प्रिय वस्तु को भगवान को प्रदान करना और उनके लिए अपने सारी चेष्टा का संपादन करना। सर्वथा शरणापत्ति और भगवान के शरणागति स्वीकार करना, तदीया नाम च सेवनम, भगवान जैसे जो संबंधित वस्तु है उसका सेवा करना, तदीय का सेवन। अरे भाई तदीय क्या है, तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णव आदि, ये इसका सेवन करना एक भक्ति है। यथा वैभव सामग्री सदगोष्ठी भी महोत्सव, एक उत्सव करना या उत्सव का दर्शन करना भक्ति है, और एक महोत्सव करना बहुत लोगों से मिल कर के जैसा पैसा है जैसा बजट है उसके अनुसार खूब खर्चा करके उत्सव मनाना, ये एक भक्ति है। ऊर्जा दर ऊर्ज व्रत का पालन करना, और विशेषण यात्रा जन्मादिशु कह रहे हैं कि उत्सव मनाना, खास करके भगवान की तिथि है जन्म का और भी तिथि, तो उस पर विशेष उत्सव करना। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ति रंग सेवन, और भगवान के चरण सेवन में विशेष रूप से श्रद्धा रखना। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकै सह, और रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना। सजातीय सजातीया सये स्निग्धे साधव संग स्वतः बरे, सजातीय वैष्णवों का संग करना। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन करना, श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति और ब्रज में वास करना। तो अंगा नाम पंचकस्यास्य पूर्व लिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोध्याय पुनरप्यत कीर्तिनम, कह रहे कि जो लास्ट में पांच कहे कौन कौन, श्रद्धा पूर्वक श्री विग्रह का सेवन करना और श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना, सजातीय स्निग्ध वैष्णवों का संग करना, नाम संकीर्तन करना और मथुरा मंडल में वास करना। कहें कि इसका उल्लेख पहले भी किए हैं लेकिन ये बहुत प्रबल है बहुत प्रधान है, तो इसको दिखाने के लिए फिर से इसका उल्लेख कर दिया गया। तो इति कायसी कांत करणा नाम उपासना चतुष्षष्टी पृथक संघातिक भेदात क्रमादिमा, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार 64 अंग का उल्लेख किया गया जिसका मन वचन इंद्रियों से संपादन किया जाता है, तो ये हुए साधन भक्ति के 64 अंग। लेकिन ये तो हराहर पढ़ दिया गया, अब किसका क्या मतलब हुआ इसको हम लोग सुनते रहेंगे। हाँ बोलिए। हाँ दूसरे जगह इसकी व्याख्या में श्लोक आया है, लेकिन मूल में चार का उल्लेख किए हैं। इसकी व्याख्या में ब्राह्मण गाय और वट वृक्ष ये सबको शामिल किया गया। हाँ हाँ बोलिए।
जी ये भागवत में सुना कि जिन गायों का दूध भगवान पीते थे उनको अपनी माँ मानते थे, तो हम यहाँ पे गायों को दूध भगवान को जानता है, मेरा भाव ऐसा था कि ये इनको भगवान प्रेम करते हैं इनसे, तो इनके लिए हम कोई मान लीजिए फार्म प्रोजेक्ट चल रहा है कि इनके लिए घास उगाया जाए, तो प्रोजेक्ट है, तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट स्वीकार करना भक्ति के विरुद्ध है या नहीं है, कैसे मेरा भाव स्वीकार करे?
ये तो भक्ति है ना, ये तो दो रूप से भक्ति है, एक तो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, और गायों को घास देना कि अपने आप में भक्ति है ना। भगवान एकादश स्कंद में कह रहे हैं पूजा पदानी में 10 स्थान बतलाए हैं, तो गोसु जव सादिना, गाय में भगवान की पूजा करते हैं घास इत्यादि दे करके, ये लड्डू इत्यादि खिलाना सीधे भगवान की पूजा है, घास खिलाना ये भगवान की पूजा है। और केवल डायरेक्ट खिला रहे हैं यही नहीं, अब हमें श्लोक नहीं है, शास्त्र अनुमोदतु करतु, जो शासन कर रहा है या डायरेक्ट संपादन कर रहा है या अनुमोदन कर रहा है, तीनों को फल मिलता है। कोई कोई है कि डायरेक्ट खिला नहीं रहे हैं लेकिन व्यवस्था बना रहे हैं खिलाने का, तो उनको भी खिलाने का फल मिलेगा। हाँ तो आएगा ही ना। अच्छा है कि आप लोगों को जिज्ञासा, अभी तो लिस्ट तैयार किया गया, अभी लगभग 2 सप्ताह तक इसी में झूलते रहेंगे।
हाँ, जब्त का मैं सिद्धांत है लेकिन भागवत का अर्थ आस्वादन भी चलने लग जाए उसमें, कि हमने पढ़ा था उसका, ये श्लोक का ये अर्थ है और बहुत अच्छा अर्थ है और अहो बता, ऐसे अभी दोनों चीज चलने लग जाती है और शुद्ध ध्यान पूर्वक जप ना करना एक अपराध है, तो ये पड़ा उसमें कश्मकश हो जाती है।
तो कैसे उत्तर दिया जाए। एक पति थे, वो कहीं विदेश जा रहे थे, उनकी पत्नी बड़ा व्यग्र थी, वो बड़ा कठिनाई अनुभव कर रहे थे, तो कहे कि देखो चिंता मत करो, हमारा मूर्ति है ना, इसी की पूजा करो। तो पूजा करने लगे, पति देव आए, अब पति देव आए घर में तो मूर्ति की पूजा कर रहे कि पति तो कह करके गए कि इसी की पूजा करनी है, और पति वहीं खड़े हैं। तो अब कोई सोचे कि लो ये तो मूर्ति की पूजा छोड़ करके पति की पूजा करने लगे तो अपराध करने लगे, तो अपराध होगा कि ठीक है। अरे जब पति सामने नहीं थे तब मूर्ति की व्यवस्था दी गई है, और जब ये भागवत के श्लोक में मन जा रहा है तो इससे अच्छा चिंतन और क्या हो सकता है, इससे कोई दूसरा चिंतन है। अब भागवत तो भगवान का एक रूप ही है ना, एक तो कुछ समझ में ना आ रहा है, एकदम कुछ समझ में ना आवे, केवल भागवत का श्लोक भी सोच रहे हैं, केवल शब्द आ रहे हैं फिर भी भगवान के रूप का चिंतन है, और फिर उसका अर्थ समझ में आ रहा है तो भगवान के गुण का चिंतन है। तो अब इसमें अब सोचना कि अब ये अपराध है तो उसी स्त्री के सामने जैसा है कि मूर्ति को छोड़ करके पति की सेवा कैसे करूं।
जब जब किस समय पर जब पे आप सुनना चाहिए हरे कृष्ण,
देखिए अब ये सब बात कह रहे हैं ना, तो अब एक दिन झगड़ा हो जाए तब देखिए शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अब कभी कभी क्या हो रहा है कि अपना कुछ सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, अब शास्त्र को इग्नोर कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और कुछ कुछ उसका आभास मिलना प्रारंभ हो गया है। तो मूलतः शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। ये भगवान के नाम का श्रवण करना, सुनना और भगवान के गुण का चिंतन करना, इसमें बहुत अंतर है। ये कहीं कहाँ ये है कि जप करते समय भगवान के नाम को सुनना चाहिए। अरे जो कोई मंत्र है तो उसके विषय में भी यह सिद्धांत है कि जपस तदर्थ भावना, जप यही नियम है कि उसके अर्थ की भावना आनी चाहिए, सिद्धांत तो यही है जपस्तदर्थ भावना। तो एक तरह से देखें तो ओंकार की व्याख्या गायत्री है, गायत्री की व्याख्या महामंत्र है, महामंत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम है, तो कहाँ डिविएट हो रहे हैं। डिविएशन है इसमें, सिद्धांत यही चैतन्य चरितामृत में है ना कि इसका इसका विस्तार है, ओंकार का विस्तार आते आते भागवतम तक हुआ है ना, तो एक तरह से तो उस मंत्र का ही चिंतन है ना, तो कहाँ डिविएशन का अवसर है।
मेरी छोटी सी बुद्धि है, मैं प्रभात जी की एक किताब पढ़ रहा था, तो प्रभात जी की किताब पढ़ रहा था तो प्रभात जी से भी किसी भक्त ने यही सवाल पूछा कि प्रभात जी मैं जप करते हुए मुझे जो है श्री कृष्णा बुक का जो है चिंतन होता है, तो प्रभात जी ने कहा सिर्फ केवल ध्यान से बोलो और सुनो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। उसने भी यही बोला कि मुझे जो है कृष्ण लीला जी जो चिंतन आता है, तो प्रभात जी ने सीधा कहा कि आपको बोलना है सुनना है, इसके अलावा तुम कुछ भी मत करोगे, उन्होंने साफ इनकार किया। जहां तक मैंने पढ़ा था ये किताब,
ठीक है ठीक है। तो उस भक्त के विषय में आप जानते हो कौन भक्त था?
मैंने बोला छोटी सी बुद्धि है मेरी, तो मैंने
तो अब यहाँ सिद्धांत और विस्तार की बात इसीलिए चल रही है ना, प्रभुपाद जी उस भक्त की स्थिति को जानते होंगे इसलिए वैसा कह दिए। अभी हम लोग एक दिन बरसाना में थे, महाराज के दो शिष्य आए वहाँ, महाराज वहाँ गए थे तो वे कह रहे हैं महाराज ये जॉब करते समय मन नहीं लगता है। महाराज का हम कब तुम लोगों को मन लगाने के लिए कहे हैं, जॉब करने के लिए कहे हैं ना, मन लगाने की क्या आवश्यकता है। वो देखिए कोई एक देशीय सिद्धांत को सार्वभौमिक नहीं बना सकते, वो व्यक्ति अधिकारी को देह करके कुछ निर्देश दे देता है। हम तो अपने कान से सुने हैं एक भक्त के विषय में, आप लोग भी कई ब्रह्मा कवि ऐसे कहते हैं, एक बार गया महाराज के पास सब ठीक से चल रहा है ना महाराज, अब दर्शन के लिए लोग आते हैं, खूब अच्छा से दर्शन कराना चाहिए, उनसे ऐसा व्यवहार बना करके किसी तरह वीसा का जुगाड़ कर विदेश चले जाना चाहिए। तो वो अपनी बात नहीं कह रहे थे, वो उसके मन के विचार का अनुवाद कर रहे थे। तो कभी कभी गुरु लोग और उसके मन के विचार के अनुवाद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने शिष्य को समझ रहे हैं कि इस समय तो कृष्ण बुक की चर्चा कर रहा है लेकिन थोड़े देर के बाद अब इसकी स्थिति बदल जाएगी। तो जो एक देशीय सिद्धांत है उसको सार्वभौमिक नहीं बनाना चाहिए, और इसमें कठिनाई है तो सब छोड़ करके जब के समय वही भगवान के नाम को ही सुनिए, अब इसमें प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रश्न करेंगे तो भाई जब का सिद्धांत है कि अर्थ की भावना करनी चाहिए, तो ये तो स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है ना कि ओंकार का विस्तार गायत्री है, गायत्री का विस्तार श्रीमद् भागवतम है, महामंत्र उसी में है, तो ये तो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। देखिए अस्तर के अनुसार कई एक चीज कहा जाता है, अब यही आप सुने कि कुछ लोग हैं कि अरे मुक्ति की बात तो दूर है, वो वैकुंठनाथ के तरफ भी उनका मन नहीं जाता है, और इस विषय में सबके लिए एक सिद्धांत नहीं है, कोई कोई अनन्य ऐसे हैं कि कृष्ण रूप के अतिरिक्त उनको कोई दूसरा रूप पसंद नहीं है। अरे कृष्ण रूप में भी द्विभुज के अतिरिक्त उनको चतुर्भुज भी पसंद नहीं है, लेकिन एक स्तर है कि पहले तात्विक अनन्यता लाओ। तात्विक अनन्यता का अर्थ है कि पहले भगवान के किसी भी रूप में तो अनन्य बन जाओ, रूप से बाहर मत जाओ, देवताओं से हटा करके भगवत स्वरूप तक अपने को सीमित करो, तो यह भी अनन्यता है। भाई भक्तों के रुचि के अनुसार कई एक स्तर है, अब जिसका जो स्तर है उसके अनुसार गुरु लोग निर्देश देंगे, इसी से गुरु और गाइड की जरूरत है ना। गुरु और गाइड की जरूरत इंडिविजुअल केस के लिए ही है ना, नहीं तो भगवान तो सब चीज गीता में बोल ही दिए हैं, अब गुरु और गाइड की क्या जरूरत है।